मेरे निकटतम दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 11 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विजय शेरावत जयपुर राजस्थान से, MS राजपूत प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और सतीश कुमार यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं आप सबको देनी होती हैं और सूचना ये है कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन जो अखबार की क्लिपिंग्स हैं, कतरने हैं, वे आपको सैटरडे को एज इट इज मिलेंगी। साथ ही साथ योजना के दो आर्टिकल्स दिए जाते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उनमें भी एक हिंदी का होता है और एक इंग्लिश का होता है। और इसके साथ ही साथ एक साप्ताहिक प्रश्न आपको दिया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि आप साथ ही साथ अपनी तैयारी के आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन आज चूंकि मेरे पास कुछ घटनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं कि देखिए सारी घटनाएं न्यूज से ही मिले आपको, यानी न्यूज से ही मिले कहने का मतलब है कि टीवी चैनल्स पर या रेडियो न्यूज से ही मिले, कुछ दूसरी ऐसी घटनाएं होती हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थान नहीं मिल पाता, तो अखबारों में जगह उनको मिल जाती है, राइट। तो आज मेरे पास इस तरह की घटनाएं हैं, उनके बारे में मैं अब आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में अभी तक आप काफी कुछ सुन रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री वहां गए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ये जो शंघाई सहयोग संगठन है इसके बारे में जान लेना चाहिए कि इनफैक्ट है क्या, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री गए हैं तो सीधी सी बात है कि भारत का इससे कोई ना कोई संबंध तो होगा ही। देखिए, जब हम इस तरह के बड़े संगठनों के बारे में बात करते हैं ना, शंघाई सहयोग संगठन एक बड़ा संगठन है, तो होता क्या है कि उसके दो तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक तो है कि हेड ऑफ द स्टेट मिल रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इस स्तर की मीटिंग हो रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। दूसरे है विदेश मंत्रियों के स्तर की मीटिंग हो रही है, तीसरे फिर सचिव स्तर की मीटिंग होती है, तो ये विदेश मंत्रियों के स्तर की मीटिंग है, इसलिए न्यूज में आपने सुना होगा विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक, ये तीसरी बैठक थी जिसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए हुए हैं, राइट। दोस्तों, ये जो शंघाई सहयोग संगठन है इसमें देखिए दो महाद्वीप के देश है, इसीलिए इसको यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यूरेशियन यानी कि यूरोप का भी और एशिया के भी, ये दोनों देश इसमें शामिल हैं, दोनों महाद्वीप के देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं, अब जब हम बात करेंगे यूरोप के कौन से देश हैं तो आपको रूस दिखाई देगा, उसमें बकायदे रूस शामिल है, लेकिन इसमें ऐसे भी देश हैं जो पहले रूस में थे लेकिन 1991 में 1991 में जब रूस का विघटन हुआ तो उससे अलग होकर के वे स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। तो ये छोटे छोटे देश हैं जिनके नाम अक्सर आप सुनते भी रहते होंगे शायद, जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये भी इसके मेंबर हैं, और चीन और रूस तो इसके दो सबसे बड़े सदस्य हैं ही। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई चाइना, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना रूस दो सबसे बड़े देश हैं, तो इन दोनों देशों का इस संगठन पर काफी अधिकार होगा। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और एक अच्छी बात है कि 2005 में भारत और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बना लिया गया है, तो इसीलिए भारत के लिए भी अब यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और भारत और चीन के संबंधों को देखते हुए फिर पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो आप इस संगठन की उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बकायदे सिलेबस में दिया हुआ है कि जो हमारे पड़ोसी देश होंगे और जो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संगठन होंगे वह भी आपको जानना है, लेकिन आपको बहुत विस्तार से नहीं जानना है, बहुत डिटेल में मत जाइएगा। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए निदेशक परेश रावल जी बना दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न सीधे तो आते नहीं है, लेकिन चूंकि साहित्य कला संस्कृति आपके सिलेबस में है तो कुछ बातें तो आपको जाननी ही चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में बना था ये, और जो उस समय हमारा इस संगीत नाटक जो एकेडमी हुआ करता था उसने इसकी एक ब्रांच के रूप में स्थापना की थी, और इसका संबंध पूरी तरह से देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है यानी कि थिएटर से था, नाटक के संबंध में प्रशिक्षण देना। अलका जी जिनकी डेथ हुई थी पिछले महीने, मैंने आप चर्चा की थी, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही निदेशक थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का निदेशक होना एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात होती है। परेश रावल जी उसके निदेशक बनाए गए हैं और आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से बहुत अच्छे ऐसे एक्टर हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट रहे हैं। मतलब यहां से उन्होंने थिएटर सीखा, फिर थिएटर की शुरुआत की और इसके बाद बहुत से लोग जैसे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से निकल करके फिल्मों में पहुंचे हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट फिल्मों में गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ी पहचान बनाई है। फ्रेंड्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि खबर है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर के। अभी ये लॉन्च किया गया है, अभी कल दो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और दूसरा ई गोपाला एक्ट। ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस इन पर नहीं बनते हैं, लेकिन आपकी जानकारी में इसलिए होना चाहिए कि जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब आप अपडेट तरीके से दे सके। अब देखिए, मत्स्य पालन है या ई गोपाला है, तो ये भी कहीं ना कहीं पशुपालन से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो आपको आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने उत्तर में आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनका उल्लेख कर दें, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है। मत्स्य संपदा योजना बहुत सिंपल से है, मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की गई है और इससे केवल ये योजना मछुआरों के लिए है जो मत्स्य का पालन करते हैं और टारगेट रखा गया है कि 5 साल में लगभग हमारा जो 70 लाख टन मछलियों का अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा और तब तक हमारा जो मछली का निर्यात है वह भी बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। सोच के देखिए, सामान्य तौर पर लगता है कि नहीं, कुछ इसका मतलब है कि हम 50,000 करोड़ का भी निर्यात कर रहे हैं, बढ़कर के वो 1 लाख करोड़ का हो जाएगा, तो निर्यात में भी हमारी वृद्धि होगी जो हमारी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा बिंदु है और इससे लगभग इस योजना से 50 लाख लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। ठीक इसी तरह से जो ई गोपाला ऐप है, गोपाला ऐप ये पशुपालकों के लिए है, गोपाल आप जानते हैं, पशुपालकों के लिए है और ये एक ऐसा ऐप होगा जिसमें पशुपालकों को बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल पाएगी, कहाँ किस पशु का कहाँ बाजार है, क्या कि वहाँ रेट्स चल रहे हैं, पशुओं की जो बीमारी होती है उसका आप कैसे इलाज करा पाएंगे, इस तरह से पशुपालन से संबंधित और जो सरकार की योजनाएं होती हैं इन सब के बारे में जो हमारे पशुपालक हैं उनको जानकारी मिल पाएगी। तो अच्छा है कि कम से कम गांव के स्तर पर पशुपालकों तक भी हम अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस तरीके से पहुँचा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं। एक आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी ये बात थी कि भारत और जापान के बीच में एक बहुत अच्छी संधि हुई है, खासकर चीन का दबदबा जिस तरीके से ये पूरे के पूरे एरिया में बढ़ता चला जा रहा है उसे देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है और वो समझौता ये है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति होगी तो फिर दोनों देश एक दूसरे के यहाँ के वायुसेना और नौसेना के हवाई अड्डों का प्रयोग कर सकेंगे और दोनों पक्ष एक दूसरे को ईंधन, खाद्य सामग्री और कल पुर्जे आदि की आपूर्ति कर सकेंगे और निर्बाध तरीके से कर सकेंगे, मतलब बिना किसी बाधा के कर सकेंगे, है ना। तो चीन के प्रभाव को रोकने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, तो ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छी सी खबर है और वो ये है कि मध्य प्रदेश ने राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया, मध्य प्रदेश की महिलाओं ने, मध्य प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है उसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। कुछ अब महिलाओं ने मांग की है कि इस आरक्षण को खत्म किया जाए। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा। और क्यों खत्म किया जाए, मतलब उन्होंने बकायदे प्रमाण के तौर पर दिया है कि अब 30% सीट होती है महिलाओं को, आप ठीक है उस पर भर्ती कर लेते हैं, लेकिन उनका कि इसके बाद जो महिलाएं बच जाती हैं उनके मार्क्स जो हैं पुरुषों के जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं उनसे भी अधिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि किसी साल जो पुरुष जो है लड़के जो भर्ती हुए मेल भर्ती वो 1231 मार्क्स पर भर्ती हो गए, लेकिन पता लगा कि वो महिलाएं बाहर हो गई जो 1250 नंबर पाई थी, मतलब उनसे अधिक नंबर है लेकिन भर्ती से वो बाहर हो गए क्योंकि उनके लिए केवल 30% आरक्षित स्थान थे। तो उन्होंने मांग की है कि नहीं नहीं इसको खत्म किया जाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड है और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है कि आप देखिए कि हमारी महिला कितनी सशक्त होती जा रही है, कितनी योग्य होती चली जा रही है, यानी कि उन्हें अब आरक्षण की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, खासकर ज्ञान के क्षेत्र में। तो आप एक रेफरेंस के तौर पर दिमाग में रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, बहुत कम समय है मुख्य विषय के लिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन। इसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने बातें की थी, लेकिन बहुत थोड़ी बातें की थी। पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है, इस पर बकायदे सरकार का कानून बन चुका है, बकायदे उसके जो पैरामीटर्स हैं वो तय हो चुके हैं, लेकिन अब सरकार इसमें परिवर्तन करना चाह रही है। तो जो परिवर्तन करना चाह रही है उसका मसौदा बना करके उन्होंने पब्लिक कर दिया है, यानी लोगों की राय मांगी है कि ठीक है, हम ये परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो आप इस परिवर्तन पर अपनी राय दीजिए। तो लोगों ने जो मसौदा है उस पर अपनी राय भेजी है, और लगभग 20 लाख लोगों ने राय भेजी है, और अब जो मसौदा आ रहा है उसका जबरदस्त रूप से विरोध किया जा रहा है। जो विरोध किया जा रहा है, उस विरोध के केंद्र में, मैं केवल केंद्रीय बिंदु यहां आपको बता रहा हूं, उसके केंद्र में यह है कि देखिए, जब कोई भी उद्योग लगाया जाता है तो यह देखा जाता है कि इस उद्योग के लगने से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा और मानव समाज को कितना नुकसान होगा। ठीक है, पर्यावरण मतलब वृक्ष पशु पक्षी सभी आ गए, और मानव को कितना नुकसान होगा। जब क्लियरेंस हो जाता है तब फिर जाकर के वहां वो उद्योग लगाया जाता है या परियोजना लगाई जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से नो डाउट कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो समय ज्यादा लग जाता है आकलन करने में और दिक्कतें हो जाती हैं, तो अब उसको इजी बनाया जा रहा है, यानी कि जो पर्यावरण प्रभाव का जो आकलन होगा उसको इतना इजी बनाया जा रहा है कि यह एक प्रकार से जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो परियोजनाएं लगाने वाले हैं, उनके फेवर में हो जाए। सरकार शायद ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जब ये स्थिति आ जाएगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग और अच्छी हो जाएगी, मतलब जो लोग हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो अभी इसलिए उद्योग लगाने से हिचकते हैं कि यार यहां वहां तो ये इसमें बहुत समय लग जाता है मंजूरी मिलने में, तो छोड़ो वहां क्यों उद्योग लगाएं, तो वो शायद आकर्षित होंगे। लेकिन इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ी हमें कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस तरीके से एक दो ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं इस नए मसौदे में कि यह बेसिकली पर्यावरण की रक्षा और मानव की सुरक्षा, इन दोनों के लिए एक खतरा पैदा कर देगा, इसीलिए इसका जबरदस्त रूप से विरोध किया जा रहा है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं बकायदे इस पर बहुत ही डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं इस तरह के किसी टॉपिक की बात करता हूं तो आप तुरंत जाकर के उस लेक्चर को सुनना मत शुरू कर दीजिए, आप अपने सिस्टम से ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, क्योंकि बीच में अगर ब्रेक करके सुनेंगे तो उससे कोई ज्यादा फायदा आपको होगा नहीं, बेवजह आपका समय लगेगा। तो मैं तो केवल याद दिलाने के लिए कि ये तथ्य आपके दिमाग में दर्ज हो जाए और आप जान सकें कि नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और चूंकि इस बार मसौदा आ रहा है, इसीलिए जो कमिंग मेन एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और आज इसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड ने बकायदे एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 5 दोस्तों के नाम हैं: प्रतिभा सिंह, विजय शेरावत जयपुर से, आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, शीतल तिवारी और वैभव काले बुल्ढाना महाराष्ट्र से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, 2 दिनों के लिए इजाजत चाहता हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।